पिता परमेश्वर बहुत ही नम्रता के साथ और दीनता के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो हर पल हर क्षण हमारे साथ में रहता है, एक व्यक्ति के समान, एक सहायक के समान, एक मित्र के समान। और पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपकी मदद चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें इस खंड को समझने में, यीशु मसीह के करीब आने में, आपकी पवित्र उपस्थिति में बढ़ने में, पिता परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने में। और जो भी त्रुटियां हमारे अंदर हैं, जो भी कमियां हमारे अंदर हैं, जो हम नहीं कर रहे हैं जो हमको करना चाहिए, उन सारी बातों में आप हमको सही करें, हमारे अंदर बोझ दें, हमारे अंदर प्रभु इस वचन के प्रति लगाव दें, और प्रभु हमें उत्साहित करें अपने वचन के द्वारा। और पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं नहीं वरन आप मेरे द्वारा हम में से हर एक से बात करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया में हम में और जो जानवर है, जीव जंतु हैं, इनके अंदर अंतर है, अंतर है नहीं है, है ना? अगर आप देखेंगे उनमें, उनका जीवन भी कुछ ही इसी प्रकार से चलता है। सुबह वो उठते हैं, खाना खाते हैं, टहलते हैं, खाने की खोज करते हैं, फिर वो दोपहर में खाना वाना खाते रहते हैं, फिर थोड़ा आराम भी करते हैं, ठीक है, फिर वो दोपहर, फिर रात में भी खाना खाते हैं। देखेंगे कुछ ऐसे चलता है जानवरों का, पक्षियों का। फिर रात में क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं। और अगर हम इंसानों का भी देखें, सुबह क्या करते हैं? उठते हैं, पूछते हैं क्या बनाएंगे, क्या बनाएं भाई, बनाते हैं, खाते हैं, फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं, फिर दोपहर में खाते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं, आराम करते हैं, फिर रात में खाते हैं, फिर क्या कर जाते हैं, क्या हो जाते हैं रविन भाई? सो जाते हैं। उनके इस भाई शेड्यूल में, उनके इस टाइम टेबल में और हमारे टाइम टेबल में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उनके जीवन में सिर्फ यही लक्ष्य है, पूरा जीवन इसी चीज के अंदर है, क्या हमारे जीवन का लक्ष्य यही है या इससे अलग है, या इससे अलग होना चाहिए? क्या हमारे जीवन में हमारे खुद के लिए कोई मिशन है या नहीं है, लक्ष्य है या नहीं है? क्या पूरा एक जो दिन जब शुरू होता है, उस पूरे दिन के लिए कोई लक्ष्य होता है? आप भाई इस पूरे दिन में मुझे ये काम करने, ये काम मुझे ये वाले करने, और ये काम मुझे बाइबल आधारित ये काम करने, मुझे बाइबल की इन बातों को करना जब भी मुझे मौका मिलता है, जब भी मुझे अवसर मिलता है, ठीक है। या फिर बिगर ही लक्ष्य की, बिगर मिशन की, पूरा दिन शुरू होता है, खत्म होता है, पता नहीं चल रहा है, अलग अलग चीजों में जहां जो मौका मिल रहा है उसी चीज को करने में लग जाते हैं। आज जो हम देखेंगे, जो देखने जा रहे हैं, वह भाई जो यीशु मसीह का जो मिशन है, यीशु मसीह का जो लक्ष्य है, वो हमारा लक्ष्य है। क्या है? यीशु मसीह का लक्ष्य किसका लक्ष्य है? यीशु मसीह का लक्ष्य हमारा लक्ष्य है। यीशु मसीह ने जिस प्रकार से जिस लक्ष्य को पूरा किया, जिस कार्य को पूरा किया, जिस मिशन को पूरा किया, आज जब यीशु मसीह स्वर्ग में है, उसकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में, वो जिम्मेदारी जब उसने हमको दी है, अपने चुने हुए लोगों को दी है, तो उसका मिशन जो है, उसका जो कार्य है, अब किसका कार्य हो गया? किसका कार्य हो गया? हमारा कार्य हो गया। ये हम कौन है? यीशु मसीह के चुने हुए लोग, यीशु मसीह की बेटी, यीशु मसीह के बेटे, यीशु मसीह ने जिसको अपना पवित्र लहू बहाकर जिसको अपना अपना बना लिया है, अनुग्रह के द्वारा जिसको चुन लिया है वो, ठीक है। यहां पर हम जो देखेंगे इस खंड के अंदर, तीन बातों को देखेंगे, तीन बातें यीशु मसीह यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। पहली जो बात कर रहे हैं, लोगों को प्रचार कर रहे हैं, लोगों को उपदेश दे रहे हैं, लोगों को भाई लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पहली ये चीज कर रहे हैं। दूसरी चीज जो कर रहे हैं यहां पर, लोगों पर तरस खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लोगों पर तरस खा रहे हैं। तीसरी जो चीज कर रहे हैं, लोगों के लिए मजदूर आने के लिए, मजदूर आने के लिए बोल रहे हैं, मजदूर आने के लिए विनती करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तीन चीज यहां पर हो रही है। और जो जो पहली जो देखेंगे वो 35 पद में मिलती है। देखो 35 पद में क्या लिखा है, 9 का 35।
यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा, और उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता
ठीक है। यहाँ पर यीशु मसीह देखेंगे, अगर आप देखेंगे यीशु मसीह ने 30 साल तक इस प्रकार की कोई सेवा नहीं करी है। 30 साल तक उन्होंने अपने घर की जिम्मेदारी को उठाया है। 30 साल तक उन्होंने घर की जो भी कार्य थे उन कार्य को करा है। 30 साल तक उन्होंने अपने जो छोटे भाई बहन थे उनको पाल पोस के बड़ा किया है, काम किया है, लकड़ी का काम किया है, ठीक है। लेकिन 30 साल के बाद 3.5 साल तक उन्होंने सेवा में आए जिसके लिए उनका उद्देश्य था, जिसके लिए वो दुनिया में आए थे, जो उनका लक्ष्य था, जो उनका मिशन था। और जब उनका जब उस मिनिस्ट्री में आए, उस सेवा में आए, उस लक्ष्य की तरफ आए, तो उनका यही काम था। वो नगर नगर गांवों गांवों में क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, फिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नगर नगर में गांव गांव में फिर रहे हैं। और नगर नगर में गांव गांव में फिरने का मतलब ये नहीं है कि भाई किसी में फिर रहे, नहीं, पूरे पूरी प्लानिंग के साथ में पूरे लक्ष्य बनाते हुए कि भाई यहां आज मुझे इस नगर में जाना है, आज मुझे इस शहर में जाना है, और वहां पर जाकर वो प्रचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आराधनालय में उपदेश दे रहे हैं, आराधनालय में वो लोगों को बता रहे हैं, आराधनालय में उपदेश दे रहे हैं, बाइबल को खोल खोल के उनको बता रहे हैं, उनको प्रचार कर रहे हैं, राज्य का प्रचार कर रहे हैं। कौन सा राज्य, कहां का, यहां बताया जा रहा है कि आराधनालय में उपदेश कर रहे हैं और राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। ये कौन सा राज्य, यहां के राज्य की बात नहीं है, इस दुनिया के राज्य की बात नहीं है, उस राज्य की, जिस राज्य के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को चुन रहे हैं, जिस राज्य में रखने के लिए यीशु मसीह ने अपने लोगों को चुन लिया है, उस राज्य का यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं। सोचो उस समय में यीशु मसीह उस राज्य का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं उस समय के लोग हैं, यीशु मसीह को जबरदस्ती पकड़ के, यूहन्ना में देखेंगे यीशु मसीह को जबरदस्ती पकड़ के उसको राजा बनाना चाह रहे हैं। बोला तू हमारा राजा है, अब तू हमारा राजा है, अब हम रोम की गुलामी में नहीं है, अब तू क्या, अब मालूम है पता चल गया है, अपने मन के अंदर सोच रहे हैं, ओ अब क्या हो गया, अभी मसीह आ गया है, अब क्या करेगा, ये हमको रोम की गुलामी से छुड़ाएगा, अभी राजा होगा, इसकी हम प्रजा होंगे, इसके हम बड़े बड़े पदों पर होंगे, इसके राज्य में हम वारिस होंगे। लेकिन उन बातों को यीशु मसीह क्लियर कर रहे हैं, उन बातों को एकदम साफ कर रहे हैं कि मेरा राज्य यहां का नहीं है, मेरा राज्य वहां का है। इस दुनिया में बहुत सारे राजा आए है ना, चले गए, जहां मरे उनका राज्य खत्म। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसे राज्य हैं, राजा हैं, उसका राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसका राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोगों को यीशु मसीह चुन रहे हैं, जब लोगों के पास उनका संदेश पहुंच रहा है, उनका उपदेश पहुंच रहा है, लोगों को यीशु मसीह चुन रहे हैं, लोगों पर यीशु मसीह अनुग्रह कर रहे हैं, और यीशु मसीह का राज्य क्या होता जा रहा, बढ़ता, यीशु मसीह का राज्य बढ़ता जा रहा है, यीशु मसीह के राज्य में लोग शामिल होते जा रहे हैं, ठीक है। यीशु मसीह राज्य का प्रचार कर रहे हैं और लोग बहुत कान लगाकर ध्यान से उस राज्य का प्रचार सुन रहे हैं। कई लोगों की आंखें खुल रही हैं, कई लोगों के जीवन में उद्धार आ रहा है, कई लोगों का जीवन बदल रहा है, लेकिन कई लोगों का जीवन नहीं बदल रहा। और यहां पर लोगों को जो प्रचार कर रहे हैं, राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, और यहां पर देखो क्या कर रहे हैं, साथ में बीमारों के लिए, दुर्बलताओं के लिए साथ में क्या कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। ये यीशु मसीह का मिशन था, दुनिया में रहते हुए यीशु मसीह का लक्ष्य था, दुनिया में रहते हुए 33.5 साल तक वो नगर नगर गांव गांव में गए, आराधनालय में गए और राज्य का प्रचार किया, पापों के पश्चाताप का प्रचार किया, और जहां जहां कोई बीमार उनके पास में लाए गए, कोई दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति लेकर आए गए, बीमार लोग उनके पास में लेकर आए गए, यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना किया। ये यीशु मसीह का मिशन था जो लोगों के बीच में था, लोगों के लिए था। और आज आज ये मिशन हमारा है, यीशु मसीह ने मिशन हमको दे दिया है, यीशु मसीह ने ये लक्ष्य हमको दे दिया है कि हम अब क्या, यहां पर यीशु मसीह बोल रहे हैं तुम कभी क्या कर रहा है, यीशु मसीह नगर में जा रहे, गांव में जा रहे हैं, हो सकता है आज इस समय में ये हमारे पर लागू ना होता हो। 2008 में मैं नेपाल में गया था, बहुत सारी जगह पर, तानसेन, ललितपुर, नेपालगंज, महेंद्र नगर, पता नहीं बहुत सारी जगह गए। तो उस जो टीम का अभी भी वो कार्य नेपाल में करते हैं, उनका ये कार्य है कि गांव में जाएंगे, एक घर में जाएंगे, वहीं रुकेंगे, सारा सारा राशन पानी लेकर जाएंगे। और मैं उनके साथ में था उस पूरे गांव के अंदर, जब तक यीशु मसीह के बारे में प्रचार नहीं होता था उस गांव से वो जाते नहीं थे, और मैं उनके साथ में रहा, इस प्रकार की सेवा करने का मौका मिला। अब हमारे संदर्भ में हम कैसे कर सकते हैं, राज्य राज्य में, गांव गांव में कैसे, क्योंकि ये मिशन किसका मिशन है, किसका मिशन है ये? क्या हम अकेले स्वर्ग में जाना चाहते हैं? क्या हम अकेले भाई, हाँ हफ्ता हमें चुन लिया भाई, बस ये बात भाई, राज्य का, राज्य के बारे में, उस अनंत जीवन के बारे में हमें पता चल गया, बस हमें आपने, हमें अकेले जाना है। अब इसको हम कैसे राज्य राज्य में, गांव गांव में तो हम फिर नहीं सकते, हम कैसे इस सुसमाचार को, कैसे इस प्रचार को लोगों को बताएं, किस प्रकार से बताएं, कौन से लोगों को बताएं, किन लोगों के बारे में यीशु मसीह के बारे में बताएं। सबसे अच्छा जो तरीका है यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने का, किनको हम बता सकते हैं, वह है जो हमारे करीब हैं। किनको बता सकते हैं? जो हमारे करीब हैं। वो हमारे करीब कोई भी हो सकता है जो यीशु मसीह को नहीं जानता। आज इस समय में ये सोचें आप, कौन है जो आपके और मेरे करीब है और यीशु मसीह के करीब नहीं है? कौन है जो नरक की तरफ जा रहा है? कौन है जो नरक की पीड़ा के एकदम करीब है, हो सकता है एकदम एकदम मरने की कगार पर है? हमें नहीं पता कौन है जो मरने के एकदम कगार पर है, एकदम मरने वाला, हमें नहीं पता कौन है जो भाई यीशु मसीह को नहीं जानता। वो कौन है व्यक्ति, आप उस बारे में भी समय में सोचो कौन है। वो हो सकता है आपकी बहन हो सकता है आपका भाई हो सकता है आपकी ससुर हो सकता है आपकी भाई आपकी सास हो सकता है आपकी मम्मी हो सकता है आपके पति हो सकता है आपके पापा हो, भाई हो, बहन हो, अच्छा एक बहुत मित्र हो, आपके पड़ोस में रहने वाले अच्छे पड़ोसी हो, कौन है वो, सोचो कौन है। यीशु मसीह राज्य राज्य में, गांव गांव में जाकर राज्य का प्रचार कर रहे हैं, पश्चाताप का प्रचार कर रहे हैं, पापों की क्षमा का प्रचार कर रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जहां पर दुष्टात्माओं का, बीमारों का है उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो कौन है बताइए, वो कौन है जिनको आपको और मुझको बताने की जरूरत है यीशु मसीह के बारे में, जो यीशु मसीह को नहीं जानते? अगर हम नहीं बताएंगे, अगर हम नहीं बताएंगे, प्रभु उसका न्याय करेगा। प्रभु पूछेगा हमसे, मेरे बेटे तूने क्यों नहीं बताया, मेरी बेटी तूने क्यों नहीं बताया, तेरे पास पूरा अवसर था, तेरे से मित्रता, तेरे संपर्क में मैंने इसीलिए रखा था ताकि वो मेरे बारे में जान सके। चुनना हमारा काम नहीं है, यीशु मसीह के बारे में बताना हमारा काम है, चुनना प्रभु का कार्य है, उद्धार प्रभु का कार्य है, विश्वास देना प्रभु का कार्य है। हमारा जो काम है यीशु मसीह के बारे में बताना, सुसमाचार प्रचार करना, बाकी काम पवित्र आत्मा काम है। कौन है वो व्यक्ति, क्या हम बताते या नहीं बताते? डर जाते, घबरा जाते, शर्म आने लग जाती है, या हम सोचने लग जाते हम उसके सवाल को जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, या हम सोचने लग जाते कहीं मेरी पिटाई ना हो जाए, कहीं लोग मुल्क मेरी पिटाई करना ना शुरू कर दे, मेरा अपमान करना शुरू ना कर दे। लोगों ने जो यीशु मसीह के, जिनको यीशु मसीह चुन लेते हैं, जिनके जीवन में यीशु मसीह आ जाते हैं, उनके अंदर से इस प्रकार की तमाम बातें चली जाती हैं। यीशु मसीह के बारे में बताने में मुश्किल से, अगर आप सुसमाचार बताने में मुश्किल से 8 या 9 सेकंड लगते हैं, मुश्किल से, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 20 सेकंड। 20 सेकंड कितने होते हैं? कुछ नहीं होते। 20 सेकंड लगते हैं किसी को सुसमाचार प्रचार करने में। और यहां पर जो प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह है, पूरे पूरे बोझ के साथ में, उनको पता उनको क्या करना है, उनको पता किस प्रकार से उनको करना है। नगरों में शहरों में फिर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, राज्य का प्रचार कर रहे हैं, और जहां पर उनके पास बीमार परेशान लोग लाए जा रहे हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। हमें भी ऐसी करना है, हमें पूरी प्लानिंग के साथ में करना है। वो कोई भी हो सकता है। क्या आप चाहेंगे कि नर्क के अंदर तड़पते रहें, आप ऊपर से देखते रहें, ओ मेरी मम्मी कैसे तड़प रही है, मेरे पापा कैसे तड़प रहे हैं स्वर्ग में? स्वर्ग से जब आप देखेंगे अच्छा लगेगा, वो भी कब तक के लिए? कब तक के लिए तड़पना है वहां पर? अनंत काल के लिए। एक बारी गया तो वहां से वापिस नहीं है, एक बारी नर्क में गया तो गया, एक बारी स्वर्ग में गए तो गए। सोचें उन व्यक्तियों के बारे में, सोचें उन व्यक्तियों के बारे में जो आपको जानते हैं, यीशु को नहीं जानते, इस बारे में सोचें, ओ ये नर्क की तरफ जा रहा है, ये नर्क की तरफ जा रहे हैं, और उनके पास एक ही ज्योति है, वो है हम ही हैं जो उनको बता सकते हैं, हम ही हैं जो उनके जीवन के अंदर वो बीज को हम बो सकते हैं। जब तो यीशु मसीह का मिशन किसका मिशन है? किसका मिशन है? हमारा मिशन है, यीशु मसीह का मिशन हमारा मिशन है। तो हमें क्या करना है? लोगों को क्या करना है? प्रचार करना है, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे यीशु मसीह तरस खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यीशु मसीह ने राज्य का प्रचार किया, उपदेश दिया, उनके लिए बीमारों के लिए, दुर्बलताओं के लिए प्रार्थना करी, फिर लोगों की तरफ यीशु मसीह ने देखा, उन भीड़ की तरफ यीशु मसीह ने देखा, हजारों भीड़ों की तरफ यीशु मसीह ने देखा, और उनको देखकर यीशु मसीह को क्या आ गया? तरस आ गया। तरस इसलिए नहीं आया, वो खाने के लिए नहीं है, इनका पीने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है। ओ कितनी दुख की बात है, जैसे हम किसी रेड लाइट या फिर वहाँ पे खड़े होते हैं, आपने देखा होगा कोई इतना ज़्यादा देखकर ही लगता है तरसा आ जाता, किसी को देखकर, कई लोगों को देखकर तरस नहीं आता है, ठीक है, उनकी शक्ल से बदल जाता, भाई ये भरे पड़े हर तरीके से, खाने से हर चीज़ कोई कमी नहीं, लेकिन कुछ लोगों को देखकर तरस आ जाता है। तो हम क्या करते हैं? मैं तो ये करता हूँ, ये तो ज़्यादातर खाने की चीज़ भाई अपनी गाड़ी के अंदर रखता हूँ, या फिर अगर मुझे भाई कोई भी चीज़ आई एकदम से मैंने उठा के उसको दे दिया, है ना। ये वो वाले तरस की बात नहीं हो रही है, ये तमाम चीज़ों से भरे पड़े हैं, ठीक है। तरस जो आया है यीशु मसीह को इनके पर, इसलिए आया, यहाँ पे लिखा क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे। किन भेड़ों के समान? जिनका कोई रखवाला नहीं, जिनका कोई रखवाला नहीं है। मतलब भेड़ों को चराने वाला कौन होता है? है ना, चरवाहा होता है, गडरिया होता है भेड़ों को चरवाने वाला, चराने वाला। अब भेड़ चर रही है, भेड़ निकल गई है और चरवाया नहीं है भाई, क्या कहते हैं भाई, रखवाला नहीं है, भेड़ों को रखवाली करने वाला कोई नहीं है, तो क्या होगा? भेड़े तो सब जगह जाएंगी, भेड़ों को नहीं पता भाई भाई वो कहाँ पर है, चरवाहा कहाँ पर है, उसको नहीं पता, क्योंकि चरवाहा की आवाज़ को भेड़े क्या करती हैं? सुनती है, पहचानती है। लेकिन ये बोल रहा है, जब भीड़ की तरफ यीशु मसीह ने देखा, भीड़ की तरफ देखकर यीशु मसीह को उन पर तरस आ गए, क्योंकि वो उन भेड़ों के समान थी जिनका कोई चरवाहा नहीं है, जिनका कोई रखवाला नहीं है। और यहां पे लिखा है और व्याकुल और भटके हुए हैं। क्या है वो? व्याकुल है और भटके हुए। सोचें जब आप लोगों को देखते हैं, कोई भी लोग हो, पड़ोस में रह रहा है, आपके रिश्तेदार है, क्या आपको उनको देख के तरस आता है या नहीं आता? तरस उस चीज को लेकर नहीं है, खाने पीने की कमी आ गई है या फिर ऐसी वैसी, तरस मतलब अनंत जीव, अनंत नर्क को लेकर हो, ये अनंत नर्क की तरफ जा रहे हैं, ये अनंत नर्क की तरफ एकदम करीब में है, ये नर्क में एकदम जाने की करीब है। और सोचो यहां पर प्रभु यीशु मसीह के अंदर उनके प्रति तरस आ गया, दया आ गई उनके प्रति, इतना कंपैशन आ गया, ओ उन्होंने उनको उनको क्या कहते हैं, उनको ये राज्य का प्रचार किया है। सोचे वो कौन है जिनको देखकर हमें तरस खाने की जरूरत है? हो सकता है वो भी हो सकते हैं जो आपको पसंद भी ना हो और यीशु मसीह को नहीं जानते हो, हो सकता है ये वो भी हो सकते हैं जिनको देखकर हमें तरस खाने की जरूरत है, जो हमारा बुरा चाहते हैं, हमारे परिवार का बुरा चाहते हैं, उनके पर भी तरस खाना है, या उनको इनके बारे में नहीं सोचना, जाने दो मैं नहीं बताऊंगा इनको यीशु मसीह के बारे में, जाने दो इनको नरक में, इन्होंने बहुत बुरा करा मेरे साथ में, मेरे परिवार के साथ में, मैं तो कतई नहीं बताऊंगा इनको यीशु मसीह के बारे में। नहीं, उनको ही बताना है जो हमारे बारे में, चाहे कितनी भी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, हमें क्या करना है? बुराई को भलाई से क्या कर देना है? बाइबल बोलती है शत्रुओं के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। शत्रुओं के लिए भाई जो जो तुम्हारे बैरी है उनके लिए क्या करना है? उनको प्रेम करना है। क्या करना है? कैसे दिखा सकते हो प्रेम? कैसे वो तरफ दिखा सकते हैं जब उनके उनके लिए उनके प्रति हमारे मन के अंदर क्या है? प्रेम भरा पड़ा है, और प्रभु के अंदर उनके प्रति प्रेम भरा पड़ा है, उनको तरस आया, तरस आकर उन्होंने यीशु मसीह ने उनको राज्य का प्रचार कर दिया। सोचें कौन है वो व्यक्ति जिन पर हमें तरस खाने की जरूरत है? जो हमारे बड़े करीब हैं, एकदम अजीब और नरक की कगार में, नरक के एकदम करीब हैं, भयानक उस आग के करीब हैं, भयानक उस ज्वाला के, उस क्या कहते हैं, जो खाई के करीब है, जो आग से भरी पड़ी है, जहां पे दांतों का पीसना है, जहां पे रोना है, चिल्लाना है, जहां पे बिलखना है, जहां पे वो मरने के लिए बोलेंगे लेकिन मरेंगे नहीं, जहां पर वो तड़पते रहेंगे, थोड़े समय के लिए भी आराम से खड़े नहीं होंगे। बाइबल बोलती है वहां पर दांतों का पीसना है, भयानक है। यीशु मसीह को उन सारी चीजों को नजारा देखते उनको, उनके ऊपर तरस आ गया और उनको राज्य का प्रचार कर दिया। और सोचें पूरी प्लानिंग के साथ हमें क्या करना है, पूरी प्लानिंग के साथ हमें उन लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना है जिनको, जो हमारे करीब है, हमारे अजीज हैं। हो सकता है हफ्ते में एक दिन में, हफ्ते में एक जन को आप बताएं, कोई बात नहीं। एक महीने में चार जन को बताएं, कोई बात नहीं। लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ यीशु मसीह के बारे में बताना। हमें नहीं पता किसके जीवन में उद्धार आ जाए, कोई भी हो सकता है। सोचें दूसरी चीज, लोगों पर तरस खाना है। तरस मतलब अनंत मृत्यु को देखते हुए, अनंत जीवन को देखते हुए। पता है बाइबल में लिखा, जब एक आत्मा मन फिराती है तो स्वर्ग में क्या होता है? जब स्वर्ग में, जब एक आत्मा मन फिराती है तो स्वर्ग में क्या बनाया जाता है? आनंद बनाया जाता है। सोचें, और जब सोचो पूरा परिवार जब क्या कहते हैं भाई बचाया जाएगा तो क्या होगा, हैं? कितना आनंद होगा स्वर्ग के अंदर, कितनी खुशी होगी स्वर्ग के अंदर ना। तो यीशु मसीह का मिशन किसका मिशन है? यीशु मसीह का लक्ष्य किसका लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य है। हमें नहीं डरना सामने वाला कितना भाई, कितनी बड़ी पोस्ट पर है, कितना बड़ा व्यक्ति है, कितना अमीर व्यक्ति है, कैसा भी व्यक्ति है, कितना हट्टा कट्टा व्यक्ति है, नहीं। हमें बताना है उसको, तरस खाना उस पर, ठीक है, राज्य का प्रचार करना है। और तीसरी चीज जो यहां पर हो रही है,
तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं।
पके खेत का मतलब क्या है? यीशु मसीह बोल रहे हैं पके खेत बहुत है। पके खेत क्या है? ये पके खेत कौन है? ये पके खेत वो हैं जो उद्धार के एकदम करीब हैं, एकदम उनको सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बताने की जरूरत है, यीशु मसीह के बारे में बताने की जरूरत है, और उनके जीवन में उद्धार आ गया, उनका जीवन बदल गया, उनके जीवन के अंदर प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास का दान आ गया। उनको यीशु मसीह के बारे में बताने की सिर्फ जरूरत है। वो पके हुए खेत कहीं पर भी हो सकते हैं, हमारे पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, पके हुए खेत, वो पके हुए खेत हमारे मित्र भी हो सकते हैं, हमारे क्लास में पढ़ने वाली वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे ट्यूशन में पढ़ने वाले वो बच्चे भी हो सकते हैं, हमारे हमारे जो भी स्टूडेंट है वो भी हो सकते हैं, वो पके हुए खेत कोई भी हो सकता है। और यहां पे बोल रहे हैं यीशु मसीह पके हुए खेत बहुत है, हर एक व्यक्ति को मैं, हर एक जन को मैं ऐसे देखना है, ये पका हुआ खेत तो नहीं है, कहीं उद्धार के करीब तो नहीं है ये व्यक्ति, ये मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी बहन, कहीं उद्धार के करीब तो नहीं है। और मौके पर एकदम क्या करना है, हमें क्या करना है मौके पर, जब हमें मौका मिले तो हमें क्या करना है, हैं? एक एक वो है ना, मौके पे क्या करते, छक्का मारना है, मौके पे क्या मारना है, जो मौका मिले मौके पे एकदम से बताना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति हमें ऐसे देखना है कि ये व्यक्ति क्या है, पका हुआ खेत है। और यहां पर यीशु मसीह बोल रहे हैं पके हुए खेत है मगर मजदूर थोड़े हैं। इस दुनिया के अंदर पॉपुलेशन में अगर अभी देखा जाए, मेजॉरिटी में पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियंस लोग ज्यादा हैं, ठीक है, मजदूर भी अगर देखा जाए आज के समय में बहुत है। हम सब क्या हैं? एक तरीके से क्या हैं? अपनी अपनी जगह में रहने वाले क्या हैं? हम तेज की बोलिए, आवाज बड़ी धीमी आ रही है, मजदूर हैं, हम सब अपनी अपनी जगह में पड़ोस में रहने वाले क्या हैं? हम जहां जहां काम कर रहे हैं वहां पर रहने वाले हम क्या हैं? ठीक है, प्रभु के मजदूर हैं। जाओ हमारे रिश्तेदारों के बीच में जब हम जाते हैं तो हम क्या हैं? मजदूर। लेकिन जिनके बीच में हम रहते हैं वो क्यों ने वो कौन है? पके हुए पके हुए खेत हो सकते हैं। और यहां पे बोल रहे हैं यीशु मसीह मजदूर थोड़े हैं। यहां पर इसको अपने संदर्भ में ऐसे ले सकते हैं कि हमें प्रभु ने हमको मजदूरी की सेवा दी है, ये मजदूरी की सेवा हमको दी है, लेकिन हम मजदूरी करना नहीं चाह रहे। मजदूरी करने का हम मौका प्रभु दे रहा है, बार बार मजदूरी करने का मौका दे रहा है कि मौके पे एकदम छक्का मारे, लेकिन हम मजदूरी करना नहीं चाह रहे। मजदूरी को लेकर हमें सोच रहा है ओ पता नहीं क्या कुछ होना जाए। यहां पे बोल रहे हैं सुमति पके हुए खेत बहुत हैं और मजदूर कैसे हैं? थोड़े हैं। जैसे हम अंकित भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए, गीता दीदी के लिए, और आज वो अवसर आया कि भाई वो आज अपने अपनी पत्नी को लेकर आए, प्रभु को धन्यवाद। और हो सकता है कि भाई अंकित के लिए उनकी पत्नी भाई खेत है, हो सकता है प्रभु उनके जीवन में वो उद्धार आज ही लेकर आ जाए, हमें नहीं पता। आज ही यीशु मसीह, आज ही यीशु मसीह को अपना जीवन दे दें, आज इस बात को जान लें। और हम सब अपनी जगह में जहां हम काम कर रहे हैं, जहां हम रह रहे हैं, जो भी हमको जान रहे हैं, हम उनके लिए हम क्या है? क्या है हम उनके लिए? मजदूर। क्या है? मजदूर। क्या है हम? मजदूर। सब थोड़ा अपमानित सा लग रहा है क्या है? हम प्रभु के मजदूर हैं। क्या है हम प्रभु के सेवक हैं। और जब भी हमें मौका मिला, यहां पे बोल रहा है कि भाई पक्के खेत बहुत हैं, इसलिए आज से जब भी किसी व्यक्ति को देखें, आप जब भी जो आपको जानता है और ईश्वर को नहीं जानता, जब भी उसको देखें, आप उसको ऐसे देखें कहीं ये पका हुआ खेत तो नहीं है। और मैं क्या हूं उसके लिए? मैं क्या हूं उसके लिए? उद्धार सबके लिए, अमीर गरीब भिखारी, चाहे कोई भी समाज से है, कोई भी वर्ग से है, उद्धार सबके लिए, यीशु मसीह सबके लिए। हमें क्या बनने की जरूरत है? क्या बनने की जरूरत है? मजदूर बनने की जरूरत है। और सामने वाले को क्या देखने की जरूरत है? क्या ये कहीं पका हुआ खेत तो नहीं है? और उद्धार हो सकता है उसके जीवन में कभी भी आ जाए। और देखो यहाँ पे यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर भाई इस खंड को समझना, जो पद इसको समझना थोड़ा सा कठिन है। प्रार्थना क्यों करना भाई? ऑलरेडी भाई प्रभु जानते नहीं है क्या? प्रभु सब कुछ जानते हैं, लेकिन प्रभु यहां पर प्रार्थना को लेकर जोड़ दे रहे हैं। भाई प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, किसके लिए? प्रभु और मजदूर दे। और इवन ये भी प्रार्थना करनी है, प्रभु मुझको मजदूरी करने के लिए मुझे मौका दे, ये मजदूरी करने के लिए, ये खेत काटने के लिए, ओ मैं ज्यादा से ज्यादा खेत काट सकूं, मैं ज्यादा से ज्यादा तेरा प्रचार कर सकूं, मैं ज्यादा से ज्यादा तेरे बारे में दूसरे को बता सकूं, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर तरस खा सकूं। जैसे तूने तरस खाया, उसका तरस और हमारे तरस में अंतर है। इसलिए हमें जब भी प्रार्थना करें, हम ऐसे प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अपने जैसा बना, मुझे अपने जैसा बना, मुझे किसी 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 व्यक्ति की तरह नहीं बनना। मुझे जैसे एक मैंने भाई का स्टेटस देखा, किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं मेरा भाई मेरा वो है, ये क्या कहते टीचर है, हमारा टीचर प्रभु है, हमारा गुरु प्रभु है। हमें जो बनना प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना है, हमें जो सोचना है प्रभु यीशु मसीह की तरह सोचना है, हमें जो क्या कहते हैं हमारे जो विचार होने चाहिए यीशु मसीह की तरह होना चाहिए, हमारा जो डिलडोल होना चाहिए यीशु मसीह की तरह होना चाहिए, हमारे जो शब्द निकलने चाहिए यीशु मसीह की तरह होने चाहिए। इसलिए यीशु मसीह का मिशन किसका मिशन है? किसका मिशन है? हमारा मिशन है। इसलिए हमें क्या करना है? नियमन क्या करना है? और प्रचार करना है, यीशु मसीह के बारे में बताना है। यीशु मसीह का मिशन था और यीशु मसीह ने उस मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जान गवा दी। वो हमारे लिए मर गए, हमारे लिए बलि चढ़ गए उस मिशन को पूरा करने के लिए। और वो हमारे लिए मरकर सोचें 3.5 साल तक उन्होंने वो मिशन को पूरा किया, 3.5 साल तक उन्होंने उस मिशन को पूरा किया। और मिशन को पूरा करने के बाद वो मरकर, वो जब वो तीसरे दिन जी उठे, और जब वो पता आपको 40 दिन तक वो लोगों को दिखाई देते रहे, ऐसी सैंध रूप शरीर में जिंदा हो गए, वो लोगों को दिखाई देते रहे, लोगों ने उनके हाथों के अंदर जो गड्ढे हो गए थे उनको देखा, उनकी पसलियों में जो छेद हो गए थे उनको उन्होंने देखा, उनके पैरों में जो कीलें ठोकी गई थी उनको लोगों ने देखा, काफी लोगों को दिखाई देते रहे। चेलों को दिखाई दिए, 500 लोगों को दिखाई दिए, अपने रिश्तेदारों को दिखाई दिए, सबको दिखाई दिए। और उन्होंने ये जो मिशन जो था, जो मिशन उनका था, जो जिसके लिए मर गए थे, और वो जिंदा होने के बाद वो मिशन उन्होंने अपने चेलों को दे दिया। किसको दे दिया?
चेलों।
और चेलों ने क्या किया? उस मिशन को अपने तक रखा। उन्होंने पूरी दुनिया में फैल गए 12 चेला, वो 12 चेले पूरी दुनिया में फैल गए। और आज उन्हीं की इस मिशन की बदौलत, जो प्रभु के मिशन को उन्होंने अपना मिशन बना लिया, उसी की बदौलत के भी उन्होंने अपने आप को मजदूर समझ लिया, इसकी बदौलत आज यीशु मसीह को आज हम अपने देश में जान सकते हैं। हम जान गए यीशु मसीह का उद्धार हमारे जीवन में आ गया है। यीशु मसीह ने अपना मिशन चेलों को दे दिया। चेलों ने क्या करा? चेलों ने अपना मिशन किसको दे दिया? अपने चेलों को दे दिया। और ऐसे ऐसे कर करके आज ये मिशन आज हमारा मिशन है। और हम सबको प्रभु के इस मिशन को क्या करना अपने जीवन में? मेरी ये प्रार्थना है, हम सबको इस दुनिया से जाना है। जाना नहीं जाना? बबीता दीदी पार्ट वन जाना है? हम सबको इस दुनिया से जाना है। मेरी ये प्रार्थना है, जो स्वर्ग में खड़े हो, ध्यान से सुने, मेरी ये प्रार्थना है, जब हम स्वर्ग में खड़े हो, राजा महाराजा अधिराज हमारे यीशु मसीह के सामने जब हम स्वर्ग में खड़े हो, मेरी ये प्रार्थना है कि हम में से हर एक के पीछे एक लंबी लंबी कतार लगी हो। खेत पके हुए जो चुने गए हैं, वो लंबी लंबी कतार हर एक के पीछे हो। और प्रभु हम सबको बोले, शाबाश मेरी बेटी, शाबाश मेरे बेटे, जो मिशन मेरा था तूने उसको लेकर तूने बखूबी इसको पूरा किया। और सारे स्वर्गदूत मिलकर हमारे लिए ऐसे ताली बजा रहे हैं। मेरी प्रार्थना हमारी कलीसिया की हर एक जन से, हर एक जन के लिए, सारे जन उसके सम्मुख जाएं और हम प्रार्थना करें, प्रभु तू दयालु है, प्रभु आपका मिशन हमारा मिशन है, आपका लक्ष्य हमारा लक्ष्य है। और उन्होंने देखे तो लोग हमारे द्वारा उद्धार पाए, हमारे द्वारा सुसमाचार को सुने। प्रभु जब भी हम हमारी कलीसिया के लोग किसी बीमार, किसी भी परेशान, किसी भी दुखी लोगों के लिए प्रार्थना करें, उनकी प्रार्थनाओं को सुने प्रभु, हम में से हर एक को अपनी शांति अपने आनंद से भरे प्रभु यीशु मसीह, आपका उद्धार हर एक के जीवन में आने पाए प्रभु, नरक की पीड़ा से बचाए प्रभु, उस अनंत जीवन जो वास्तविक है प्रभु, जिस जीवन को हम जी रहे हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, वो कितनी सुंदर हमको लगती है प्रभु, लेकिन प्रभु वो जीवन कितना, वो दुनिया कितनी सुंदर होगी जिसके लिए आप अपने लोगों को चुन रहे हैं प्रभु, कितनी सुंदर होगी, कितनी कितनी सुहानी होगी प्रभु। और प्रभु होने दे के प्रभु हमारे द्वारा लोगों को चुने प्रभु, यीशु मसीह के नाम से।